संस्थापक आचार्य शिव प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेश आचार्य शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण भोग गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवे भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय हो। जय बोल प्रेमानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरम चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज हम जो है भगवद्गीता अध्याय दो का अठावनवा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए यदा संहर्ति च आयम यदा संहर्ति च आयम उर्मो अंगानिव सर्वशः उर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ति चायम् उर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ति चायम् उर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ति चायम् उर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संकल्प कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं पापितं येन भूतले स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणालवं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणानन्दा श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा हरे कृष्णा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्णा। हम भाई भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता है, ये 54वें श्लोक में और आज हम 58वां श्लोक है, तो ये भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और अर्जुन प्रश्न करता है कि जो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में दीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि भक्त तो कहा कि स्थित प्रज्ञ है, स्थित है, तो अर्जुन कहता है कि पर उसके लक्षण कैसे हैं, भक्तों को किस तरह के लक्षण होते हैं। हम देखते हैं कि संसार में भी हम ऐसा जो है विचार रखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसका किस तरह का जो है वो अलग से ही पता लगता है कि हाँ वो डॉक्टर है। कोई प्रोफेसर है तो उसे व्यवहार से मालूम पड़ता है कि वो प्रोफेसर है, और राजनीतिज्ञ है तो उसके बोलने के तरीके से हम उसकी पहचान करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन ने भी प्रश्न किया कि भाई भक्त जो है उसका किस तरह से वो व्यवहार करता है, और चित्त प्रज्ञ, तो इस शब्द को ब्रह्मचारी भावार्थ में कहा। तो इसमें जो विशेष था कि वो कहते हैं कि वह किस तरह बैठता है, तो बैठता के में ये जो उत्तर है आज के श्लोक में, तो इस प्रश्न का है कि वह किस तरह से बैठता है। बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मेरे को किसी परिस्थिति में ऐसा लगा कि मेरी बात का कोई उपयोग नहीं है, मैं कुछ भी कहूँगी कोई सुनने वाला नहीं है, तो कहते हैं मैं चुप बैठ गया। तो ये जो चुप बैठ गया बोलते हैं ना, तो ये वहाँ यहाँ पे वही कहते हैं तिष्ठति। तो वह किस तरह से जो है, जो वहाँ कहा गया कि वो बैठता है, तो उसका यहाँ पर उत्तर है। तो कैसा कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को ज्ञान विषयों में से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे को यहाँ ये तो ज्ञात है कि इस संसार में जो हमारा जो हमारे सामने जो बहुत बड़ा संकट है, तो जो संकट है उनको उत्पन्न होने का जो मूल कारण है वो इंद्रियां हैं। कि अगर हम इंद्रियों के आवेश में आ जाते हैं और इंद्रिय सुख और संसार को भोगना चाहते हैं, तो उसी के कारण हमको जो है दुख प्राप्त होता है। और इसीलिए जो है ये प्रश्न भी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानना चाहिए। और इसीलिए बता दी भक्त क्या करता है, तो भक्त क्या करता है तो प्रभुपाद उसमें समझाते हैं इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। और ये तो हम सभी अपने अपने अनुभव से जानते हैं कि अगर हम इंद्रियों को के पीछे जाएं तो इंद्रियां जो है वो जिसके प्रति उसका आकर्षण होता है, शरीर का हमने जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो इनका स्वभाव है कि जैसा हम उनको अगर खुला छोड़ दें तो वह सिर्फ भोगना चाहते हैं। जैसे जीवा है तो जीव को अगर खाने की हम स्वतंत्रता दें तो कुछ भी खाने को तैयार है, और उसमें उसको जैसे कि कोई डायबिटिक होता है तो उसे पता है कि उसे जो है मिठाई नहीं खानी चाहिए, उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि उसका उसने हमेशा अपने जीवन में कभी मीठा खाया है तो मिठास के प्रति एक आकर्षण है, तो जब मीठा आएगा तो वो उठा के और सीधे मुंह में रखते, उसमें उसे ये नहीं याद होगा कि इसके बाद में मुझे कितनी तकलीफ होने लगती है। और यही हमारा इन इंद्रियों के साथ में सामान्य रूप से हम सभी का अनुभव होता है कि हम भी जब इंद्रियों के आकर्षण में पड़ के इंद्रिय भोग करते हैं तो उसके बाद हमको कष्ट होता है। आगे बता देंगे यही संस्पर्श जाग होगा दुख जो नहीं होते, तो ये जो इंद्रियां जो इसके संपर्क में आती है, जो हमारी कर्म इंद्रियां उस पदार्थ के जिसको हम समझते हैं इसके द्वारा मुझे सुख प्राप्त होगा, और होता क्या है कि उसके बाद में सुख और दुख कई तरीके से होता है। उसका एक उदाहरण ये होता है कि मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, मैं एक रसगुल्ला खाऊं मुझे बहुत आनंद होगा, पर हमारी इंद्रियां जो है वो तो आग बोलते हैं ना अग्नि में घी के समान, आप उनको कितना ही डालें वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप एक खाओ दूसरा खाओ तीसरा खाओ तो एक समय के बाद ये इंद्रिय सुख भी जो है उसका जो है आनंद घटता चला जाता है। उसके बाद क्योंकि आपने एक सीमा से अधिक खाया है तो उसके बाद आपको कष्ट भी हो गए, भोजन का भी ऐसा ही है, पहला तौर बहुत भूख लगी है पहला तौर लेंगे तो बहुत आनंद होता है, उसके बाद दूसरा तीसरा, और अगर आपने ज्यादा खा लिया तो उसके बाद में फिर आती को तकलीफ है। तो यह संसार का नियम है, यहाँ जो है भोग क्या भोग क्या हम भोगते हैं और फिर जब कोट ऐसे क्या, तो इसी में ही पर सबसे बड़ा संकट क्या है कि अगर हम इसी में रह गए तो हम इस संसार में ही रह जाएंगे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस दुखालय जो है इसमें ही रह जाएंगे। हम यहाँ क्यों आए, हमारा आने का कारण भी यही है क्योंकि हम भोगना चाहते थे, इसलिए इस भौतिक संसार की रचना की गई कि फिर जीव को भगवान ने ये उसके लिए व्यवस्था कर दी कि आप भोगना चाहते हैं तो आपके भोगने के लिए ये फिर शरीर, ये शरीर यही मिलता है भगवान के वहाँ जो है आध्यात्मिक शरीर होता है, तो यह शरीर नहीं प्राप्त होता है। उस आध्यात्मिक शरीर में जीव अपने मूल रूप में होता है, मूल रूप में वो भगवान की सेवा ही करता है, वो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है। और तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले सर्प के लिए बोलते हैं कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। तो विषैला सर्प जो है आपने देखा होगा सपेरे को, वो सर्प को ऐसे अपने काबू में कर लेता है कि वो अपनी दीन बजाता है और सर्प उसके दीन के आसपास उसके ही कहने के अनुसार वो कार्य करता है, उसके बाद वो अपना फन निकालेगा, जब दीन से वो उसका वो करता है और वो फिर वापस उसमें बैठ जाता है, तो वो कई प्रकार से ट्रेनिंग होता है। प्रभुपाद जो है सर्कस के शेर का भी उदाहरण देते हैं कि सर्कस का शेर तो आदमखोर है, अगर वो जंगल में उसको छोड़ दिया जाए तो वो किसी की सुनेगा, और वही शेर जो है सर्कस में जो उसका जो भी उसका संचालन करता है जो ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर जो है उसको ऐसा ट्रेन कर देता है कि जब वो बैठता है उठ जाता है जब वो बैठता है, शेर को कैसे करता है वो उसको कहते हैं प्रभुपाद समझाते हैं कि वो किस तरह से करता है कि उसको शेर को बहुत प्रताड़ित करते, बड़ी यातना देते हैं, जब शेर जो है उसको इतनी भूख लगी होती है उसको कुछ नहीं देते, उसको बहुत परेशान करते हैं, फिर उसके बाद में वो उससे काम कराता है, उठ जा बैठ जा, जब वो 3 बार उठेगा बैठेगा उसकी बात मानता है तो उसको खाना देते हैं। तो उसके दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि अगर मेरे को खाना चाहिए तो मुझे उठना बैठना करना पड़ेगा जैसे ये ट्रेनर कहता है। तो इसी प्रकार से वो सर्प के लिए भी उदाहरण दिया और इसलिए कि अगर हम इन्हें छोड़ दें, सर्प या शेर वो उसका मूल प्रभाव ऐसा नहीं है, वो तो स्वतंत्र रहना चाहता है, किंतु यहाँ पे वह नियंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो इंद्रिय दृष्टि करना चाहता है, उसका अपना एक आकर्षण है। ऐसे ही हम भी हैं, अगर हम इंद्रियों के उसको ही संतुष्ट करने के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारी भी वही स्थिति रहती है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो श्लोक में भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं वो कछुए का उदाहरण देते हैं। कछुए का उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए ये भगवान कहते हैं कछुआ, तो कछुए की विशेषता है कि कछुआ अपनी मर्जी से अपना सिर और पैर, चार पैर और सिर, सिर्फ वही एक है जो उसका जो कवर होता है ना उसके बाहर होते हैं, और जहाँ वो देखता है कि मेरे लिए कोई जो है किसी तरह का कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मेरे लिए कोई बाधा है, किसी तरह की परेशानी आने वाली है, तो खट से उसके अंदर चला जाता है। हाथी भी अगर कछुए के ऊपर पैर रख दे कछुए को कुछ नहीं होता है, कछुए को किधर भी फेंक दो, किधर भी चले जाओ, कैसा भी करते रहो, उसको कुछ नहीं होता है। वो अपने को जब भी वो देखता है कि मेरे सामने कोई खतरा आने वाला है वो अपने आप को अंदर कर देता है उस खोल के अंदर, और वो खोल इतना शक्तिशाली होता है। तो ऐसा ही उदाहरण इसको किस तरह से इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों को भी हमको नियंत्रित करना सीखना चाहिए कि जब जब हम खतरा इन्हीं इंद्रियों की वजह से हम परेशानी में, ये तो हम लोगों को निश्चित समझ आ गया। जब हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो हमारे को ये तो एक मूल सिद्धांत जिसको हमें बार बार आचार्य बताते हैं, समझ ही लेना चाहिए कि इस संसार में सुख नहीं है। अगर मैं इस संसार के भौतिक वस्तुओं के पीछे जाऊंगा तो संसार में सुख नहीं है। सुख है अगर हम भगवान की सेवा में। तो जब जो है मेरे को अगर ये मूल सिद्धांत समझ में आ जाता है तो फिर मुझे ये भी पता है कि इस संसार में जकड़ने का कारण क्या है, इंद्रियां। तो इसे पहले के श्लोक में वो बताया भी है। और मनो श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। मतलब मनोधर्म कि है क्या कि सुख है नहीं, पर हम अपने मन से ऐसा आभास आता है हमको और हम सोचते हैं इसलिए मैं सुखी होने वाला हूँ। अलग अलग परिस्थितियां हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जब तक हम हवाई जहाज में नहीं बैठते थे तो हमको लगता नहीं जो हवाई जहाज में बैठता है वो कितना सुखी होगा, जब तक हमने कार नहीं देखी थी जीवन में तो तब हमारे सामने जब हम किसको देखते थे कार में जा रहे थे लगता है कार में बैठता है इसको बहुत सुख प्राप्त होता होगा। ऐसे ही जहाँ एयर कंडीशन वगैरह पहले कहीं कोई कुछ था नहीं, जिस दिन जब किसी ने देखा उसको लगा कि शायद मैं इससे सुखी हो जाता हूँ। इस संसार का असल में सारा जो तंत्र जो आज का चलता है ना, ये जो एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, तो वो यही है कि वो हमको ऐसा दिखा देंगे ऐसा करो आप सुखी हो जाओगे, और इस तरह से हम वो चीज खरीदते हैं। तो ये सब क्या है, मनोधर्म, मन से उत्पन्न जो है हमको ऐसा एहसास होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि अगर जो है मनोधर्म से जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे, तो ऐसी कोई भी इच्छा जो मनोधर्म से उत्पन्न हो उसका परित्याग कर देता है, वही कछुआ कर रहा है। यहाँ पे फिर उदाहरण में कछुए का उदाहरण देते हैं कि जैसे ही वह अपनी जिस तरह से वो पांच उसके अंग बाहर हैं, तो वो समझाते हैं कि ये जैसे पांच अंग है, क्यों कछुए का उदाहरण दिया कि हमारे को भी यह ज्ञान होना चाहिए कि कब कब हम अपनी, क्योंकि हमारा ज्ञान का जो मूल है वो पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें होता है, तो हमको भी उनको संकुचित कर देना चाहिए। जैसे ही हमें दिखे कि हमारे लिए खतरा है हमें उसको संकुचित करना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे हम सब अपने अपना जो है वो कर सकते हैं अवलोकन की हमारे को कौन सी चीज के प्रति आकर्षण है, ये जो हमारे हरेक का अपना अपना अलग होता है, ये प्रारब्ध के कर्मों के कारण भी होता है। आज के लिए जो जिस चीज का हमने भोग किया रहता है तो जो क्षणिक सुख मिलता है तो क्षणिक सुख की छाप हमारे हृदय में रहती है, तो हम बार बार उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एक जो हम सभी ने अब बहुत मेरे ख्याल से हमने कहा कि नहीं तो आपका अनुभव किया होगा कि हम जानते हैं कि भगवान का प्रसाद जो है खाना ही उससे ही हमारी मुक्ति है। भगवान का प्रसाद दिव्य है तो इससे क्या होता है कि हमारे को कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, ये शुद्ध होता है और ये हमें शुद्ध करता है। इसके विपरीत अगर हम संसार बाहर का जो कुछ भी खाएंगे तो उससे हमारे मन पे असर होता है और वह मन जैसे ही अशुद्ध हो जाता है तो वह मन गलत चीजों की तरफ उसका आकर्षण और प्रबल होता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने का एक तरीका हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रसाद करते हैं भगवान की दया प्राप्त करते हैं। हम महाप्रसाद गोविंद में बोलते हैं जीवे पर विचार जीवे पर विशेषा कृष्ण पढ़ो दया मौ, तो जो कृष्ण की दया है तो वो प्रसाद जब हम खाते हैं तो उससे हम शुद्ध होते हैं। तो अब उसके लिए अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो उसके बाद में हमें संसार की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर अगर समझिए किसी को ये ज्ञान है कि मैं आप एक जगह पे रोज जा गुजरते हैं और उस जगह से आप कुछ भौतिक कुछ भी कुछ समझिए किसी को किसी रेस्टोरेंट के प्रति बहुत हमेशा से खाता है तो वो जब भी जाता है तो उसे वो याद रहेगा, याद रहेगा तो अपने आप ही उसका आकर्षण होगा उसकी तरफ कि वो फिर से कहेगा कि अच्छा यार मैं दे देता हूँ खा देता हूँ। तो अब उसको क्या करना होगा, उसका कंट्रोल क्या होगा, कछुए के समान उसको अपनी इंद्रियों संकुचित कैसे करना है, उसका तरीके उसका एक तरीका ये भी है कि जब उसे पता है कि मेरे लिए ये वाला खतरा रहता है मैं ये ना करके मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊँ, क्योंकि जब वो देखेगा नहीं जब तक उसकी वो पूर्व का किया हुआ कर्म उस पर वो असर नहीं डालेगा उसको, क्योंकि संसार में ऐसे ही तो चलते हुए हर चीज के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो जब जब ऐसे आकर्षण आते हैं उस समय पे हमको उससे अपने को दूर करना है और दूर करने के साथ साथ हमको इसे अच्छे श्लोक में हम ये भगवान बताते हैं कि क्या करना होता है। रस वर्जम रसो प्रत्यय परम दृष्टा निवर्तते, मतलब अगर हम उससे ऊपरी उसको सुख देंगे उसको एक बार जब और उससे भी बेहतर सुख प्राप्त होगा तो जो छोटा सुख है जो ऐसी भौतिक वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है उसके प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। और वो कैसे होता है कि जैसे हम यहाँ आते हैं अगर आप मंदिर में आते हैं भगवान की सेवा में आते हैं आप भगवान की कथा सुनते हैं भगवान का कीर्तन सुनते हैं भगवान का प्रसाद खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में शांति महसूस होती है। हमने हर किसी के जीवन में शांति आती है और जब हम यहाँ रहते हैं तो उस समय पे हमें वो सांसारिक जो हमारी कामनाएं इच्छाओं की वजह से ही ये सब हो रहा है तो हमारी जो कामनाएं हैं वो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं करती, हमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है उन कामनाओं में। क्योंकि जब हम यहाँ हैं हम यहाँ पे बात सुने तो हम शांत रहते हैं। आप देखिए हम यहाँ सुनते रहते हैं हर दिन आए दिन जो है अखबार में आता रहता है कि वो कितने ही लोग जो है सुसाइड करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए वो मानसिक स्थिति, एक तो जब हमारे जिसके पास में आश्रय नहीं है, हमारे पास में भगवान है जो परम आश्रय है। जब आपके पास में भगवान का आश्रय है तो आपको उसकी वजह से जो एक विश्वास होगा है ना, आपको कभी भी जीवन में परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। हम श्री प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं कि जीवन में कितनी कितनी विकट परिस्थितियां आई, कितना कष्ट आया। ऐसे ही कई आचार्यों को आज भी जो हमारे वर्तमान गुरु हैं हम सबके जीवन से देख सकते हैं कि उनके जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं पर वो विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो पूर्ण श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण पे, उन्होंने जिनका आश्रय लेकर रखा है परंपरा पे, उन्हें पता है मेरा तो बुरा हो ही नहीं सकता। बच्चा माँ की गोद में, वो उदाहरण देते हैं श्री प्रभुपाद कि छोटा बच्चा जो है माँ को देखता है तो बेड पे से सीधे कूद मार देता है, उसको पता है माँ पकड़ ही रही है, उसको बिल्कुल किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ऐसा जब हमें उस आश्रय का हमें पता है कि हमारा वजह से हमको कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ ही नहीं सकती कि हम ऐसा गलत काम करें। ये जीवन जो दिया है इस देह के द्वारा, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है इस मनुष्य जन्म के द्वारा, हमको जो इसका कारण है हमें संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्म हमारे इस शरीर को आधे में काटने से खत्म नहीं होंगे, पूर्ण के कर्म है हमारे, उन पूर्व के कर्मों का जो हमें रिएक्शन है वो तो हमको सहना ही होगा। तो पर उसको हम अगर बोले कि मैं ये शरीर खत्म कर दूं तो खत्म नहीं, वो तो मेरे लिखे अगला जब शरीर मिलेगा फिर वापस आपको वही यातना से आपको गुजरना पड़ेगा। तो फिर क्या समझदारी कि जब हमें अब समझ में आ गया कि ये जीवन का मूल, जीवन में सुखी होने का सिद्धांत क्या है, तो हमको वही करना चाहिए और वह सिद्धांत हम हमारे को, और उसी के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंद्रियों का, तो हमें अपनी इंद्रियों को संयम करने का ज्ञान होना चाहिए। बड़े उदाहरण है कि इंद्रियां इतनी खतरनाक है, अगर हमें ज्ञान होगा, अगर हमें ज्ञान होगा, और इंद्रियों का कहाँ से वो होता है, उत्पन्न होती इच्छा, सूक्ष्म रूप से एक इच्छा उत्पन्न होती है। अगर हमें ज्ञान है और हम समझ जाते हैं कि ये इच्छा सांसारिक है, ये भगवान के आनंद के लिए नहीं है, तो उसको हमें वहीं पे ही रोक देना चाहिए। तो वो जो सांसारिक इच्छा है उसका, वो अगर हमें समझ में आ गई, एक भक्त है वो कहते हैं कि वो हमेशा इच्छा को ही प्रश्न करते हैं कि अरे वो आर्मो किसने बहका दिया तुमको, जरा उस ओर तो देखो जिधर से चल के आई हो। मतलब वो इच्छा को ही प्रश्न करते हैं कि तुम मुझे क्या पिछड़ाने की, मतलब मेरे को विचलित करने का प्रयास करती है, कहते तू पहले ये तो देख कि तेरा जो जन्म है कहाँ से हुआ है। तो जन्म, उसका जन्म हमारे अंदर ही कहीं हमारे पूर्व की वजह से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नहीं तो उसका कहीं कोई भेद नहीं होता। अगर हमें ज्ञान है ये इच्छा मात्र मुझे जो है परेशान करने के लिए आई है, तो हमें उसे उसी टाइम पे उसको कंट्रोल करना चाहिए, पशु की तरह से अपनी इंद्रियों को संकुचित करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा के द्वारा ये शुद्ध हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं शेर का। कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम सोचते हैं कि अब मैं जो है शुद्ध हो गया, मेरे को किसी भी ऐसे सांसारिक आकर्षण जो है अब क्षीण हो गए हैं, मेरे को इतना ज्यादा किसी को विचलित नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अगर संसार में आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे योगी भी कभी कभी किसी एक आकर्षण में पड़ के और गिर जाते हैं, तो क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि भगवान की अपनी शक्ति है माया, भगवान के पास पहुंचना इतना सरल नहीं है। आप सुना हम बार बार सुनते हैं कि कृष्ण भावना में आने से हमने इस माया के अगेंस्ट जो है युद्ध का ऐलान किया है, ये हमारा वॉर है उसके अगेंस्ट। तो जब हमने युद्ध किया है तो उधर से भी तो हमारे पे आक्रमण होगा ही होगा, हम पे हमला होगा, वो आक्रमण ही इंद्रियों के द्वारा होता है। तो हमको जब ये समझ में आ गया कि हमने, और हमें पता है कि पर इस यह जो हम युद्ध लड़ रहे हैं ये युद्ध जो है अच्छा है, समझदारी है हमारी, तो पर इस हमको क्या हो रहा है, उसको सावधान है, आवश्यकता है सावधान होने की। तो हम फिर क्या करते हैं कि हमको अपनी इन इंद्रियों को एक तरफ तो उधर सांसारिक जो भौतिक सुख है उसके आकर्षण से बचाना है कि हम उसमें ना पड़े, और दूसरी तरफ इनको इंद्रियों को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की कथा सुनने से ये इंद्रियां जो है, जो मंत्र से जो क्या होता है कि मन अल्टीमेट जो मोर जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे को करता है मन, वो ना मनोधर्म, तो जो मन जो है उसको सशक्त बनाने के लिए हमको इस मन को और अच्छे सुख की जो परम दृष्टवा निवर्तते उस सुख का सुख देना है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कीर्तन है, तो कीर्तन में जब सुंदर बहुत अच्छा भक्त लोग शुद्ध भक्तों का जो कीर्तन होता है तो वो हमारे को शांत कर देता है, हमारे हृदय और हमें बड़ी बड़ा उल्लास होता है, बड़ी इच्छा बहुत आनंद होता है। तो जब हमारे को तो ऐसा आनंद, तो हमें वह आनंद बार बार प्राप्त करना चाहिए, जितना हमारे हम उसको प्राप्त करेंगे उस आनंद को, तो हमारे को ये इंद्रियों जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। और जो शेर का मैं कह रहा था, प्रभुपाद शेर का उदाहरण भी देते हैं कि शेर जो है इंद्रिया को जब हमने उनको वो नहीं दे रहे हैं उसकी खुराक, तो वो क्षीण हो जाती है। तो जो शेर है चुप पड़ा है, सुप्त शेर हो गया, सो गया है, किंतु वह मरा नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई। अगर आपने फिर भी उसे अगर छेड़ा तो शेर पलट के आएगा और शेर का दबाव है और वो वार करेगा आपको। और शेर अगर जो है अपना कितना भी कमजोर है फिर भी अगर वो वार करता है तो वो आपकी ये जो है खतरनाक हो सकता है। तो समझदारी क्या है कि हमें उसको छेड़ना नहीं चाहिए, हमें इन इंद्रियों को किसी भी तरह से वो कहते हैं चैलेंज ललकारने वाली सिचुएशन आएंगी कि मेरे को मैं तो अब मेरे को जो है ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि मैं आज से कुछ भी मेरे सामने आए मैं उसे विषय बनने वाला हूँ, कान से मैं कुछ भी सांसारिक बात सुनता हूँ मैं उसे विषय बनने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। हमको अपने आप को ये जानना चाहिए कि ये माया जो है बहुत सशक्त है, परंतु हम जो है भगवान से जो ये आध्यात्म हमारी जो भक्ति के द्वारा हम इसको धीरे 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 ये इतना क्षीण हो जाएगा इसकी कोई शक्ति नहीं मृत्यु समान जाएगा, पर उसके लिए वो करना पड़ेगा और इस अभ्यास को हमें बहुत समय तक करना चाहिए। तो हम जो है यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी प्रकार कृष्ण भावना भावी व्यक्तियों को इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। और कैसे करेंगे इसके कई उदाहरण हैं। एक तो इंद्रियों का जो इंद्रियां कितनी सशक्त होती हैं इसका उदाहरण जो है वो तो काल कृष्ण दास लास्ट फ्राइडे क्लास में भक्तुल कृष्ण दास प्रभु जी ने जो है हमको बताया था कि काल कृष्ण दास जो है भक्त थे और ये महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ में जब चैतन्य महाप्रभु जो है दक्षिण भारत की यात्रा पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वह उनके साथ में थे और उन्होंने जो है भगवान के साथ में यात्रा की, भगवान का संपर्क किया, उनको क्या आप सोचिए उन्हें क्या नहीं मिला होगा और क्या आध्यात्मिक सुख उन्हें मिला होगा, है ना। फिर भी उनका वर्णन आता है कि वह जो है अपनी यात्रा में एक स्त्री के आकर्षण में पड़ गए और वो भगवान के संग छोड़ दिया था। तो जो व्यक्ति पहले तो कितना अच्छा भक्त होगा कि उसे भगवान का सानिध्य मिला और वो भगवान के सानिध्य में होके भी माया की चपेट में आ गया तो आप और हम क्या चीजें। तो ये ऐसे सब उदाहरण जो आ रहे हैं ये हमारे लिए है कि हमको ये हमेशा पग पग में ये समझना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। हमको तो मूलतया गुरु और भगवान की शक्ति पर ही निर्भर रहना चाहिए और इसीलिए गुरु की जो है शक्ति, भगवान तो भगवान परम आश्रय है किंतु जो हमें गुरु के द्वारा जो जो आश्रय मिलता है, जो गुरु हमारे को प्रोटेक्ट करता है ना, वो तो अनुभव से ही हम जान पाते हैं किस तरह से गुरु हमारे को किस कैसे कष्टों से हम जिससे कि हम आध्यात्मिक मार्ग पे स्थिर रहे। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी कथाएं हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण ये कछुए के उस पे जो एक वृत्तांत याद आता है वो जलग्रह, जो जड़ भरत थे वो जो है भरत महाराज जो है वो भरत महाराज बहुत योगी थे, संसार उनके पास में संसार के राजा थे और उनके पास में संसार के समस्त सुख थे, पर एक समय पर आकर उन्होंने जो है बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा भरेश्वर भगवान की जय, वाणी भगवान की जय, जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा रामायण की जय, लक्ष्मीदेव भगवान की जय। तो भरत महाराज, तो भरत महाराज जो है अपने जीवन के अंतिम कैसा व्यक्ति की उसने अपने पास में समस्त सुख थे और उन्होंने वह सब त्याग के उन्होंने कहा अब मेरा समय आ गया है कि मुझे जो है अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे अब जानना चाहिए। तो उन्होंने सारा अपना राज्य का जो है बेटे को दिया और उसे त्याग कर और वो वन में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। और वहाँ पे उनका जब एक बार हिरण का बच्चा, हमने सबने कथा कई बार सुनी, हिरण का बच्चा आ रहा था तो उनको दया आ गई, उन्होंने उसको उठाया, उसे पानी पिलाया, उसको देखा छोटा बच्चा था उसको कैसे छोड़ते बयान में खा देते, तो उसका लालन पालन करने लगे और उसके प्रति उनका मोह उत्पन्न हो गया। मोह हो गया, एक बार वो बच्चा जब भागने लायक हो गया तो भागा, वो चला गया तो उसे ढूंढने के लिए निकले, तो उसी हिरण के ही ध्यान में थे, उसी को ढूंढ रहे थे, तो उसी समय पर उनकी उनको चोट लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका अगला जन्म जो है हिरण का होता है, पर वो तो भक्त थे, परम भक्त थे, तो वो जब हिरण का जन्म होता होता है तो उस समय पे भी उन्हें अपनी जो है ये स्मरण था कि मैंने कहाँ से अपनी भक्ति छोड़ी थी, मैं क्या था। और उसका जो उनका अगला जन्म होता है वो जड़ भरत का है। तो जड़ भरत जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, एक ब्राह्मण से उनकी दो पत्नियां थी और उनके बच्चे थे, तो उनमें से एक पत्नी से ये पुत्र हुए जड़ भरत। पिता ने पिता को बहुत उनके प्रति मोह था, अपना बच्चा था और दाल प्यार था। पिता ने बहुत प्रयास किया कि मैं इसे जो है जो मूलभूत सिद्धांत है शुद्धि के, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, मैं इसे सिखा रहा हूँ। जड़ भरत तो वो सुनते थे कुछ न बोलते थे, हमेशा जो है वो उनको सिखाते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनको कई तरह से उन्होंने मंत्र पढ़ाने का प्रयास किया, वो कहीं कुछ भी किसी तरह से भी जो है वो उन पे असर नहीं होता। तो उन्होंने सबने मान लीजिए तो मूर्ख है, पर ऐसा नहीं, जड़ भरत जो है परम ज्ञानी थे। तो वो कछुए का उदाहरण उन्होंने देखा कि ये संसार में सब कुछ जो है इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये मुझे संसार में, उन्होंने कहा संसार में रहना ही नहीं। तो वो सिर्फ वो भगवान की कथा होती थी उसे सुनते थे, बाकी सारी जो कथा होती थी उसमें वो अनमने हो जाते थे कि ऐसे उन्होंने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ व्यवहार नहीं करते थे। पिता का ने देह त्याग कर दिया। पिता जब चले गए तो भाई लोगों ने बोला कि उन्होंने तो पता था कि उन्होंने कहा इनसे कुछ लाभ नहीं है, तो उनको जो भी कार्य दिया जाता था वो काम करते थे। उनको खेत में दे दिया कि आप ये करो, तो जो काम करते थे वो सब काम करते, जो उनको खाने को देते थे वो खा लेते थे। कई कई दिन तक नहाते नहीं थे, वो ऐसे ही रहते थे कि संसार में सब मानते हैं कि ये जो है इनसे कोई लाभ नहीं है, नहीं कोई कोई तो समझता ये गूंगे बहरे हैं, बोलते ही नहीं थे। कई कई दिन हो जाते थे बोलते ही नहीं थे किसी को कोई कुछ, क्योंकि संसार के साथ किसी भी तरह का वो आदान प्रदान करते ही नहीं थे। फिर एक समय पे वो अपने जो उनके खेत थे, खेत की रखवाली कर रहे थे और वहाँ पे एक राजा गुजर रहा था, तो राजा के जो डोली है उसको ले जाने के लिए जो है वो एक आदमी जा रहे थे। तो जो है उन्होंने वो ढूंढने गए कि कौन मिले कौन मिले, तो वहाँ देखा कि खेत में बैठे हुए थे, तो उन्होंने इनको उठा दिया। तो इनको उठा के लेते जाते हैं और जो है जड़ भरत जो है वो उनको देता। जड़ भरत जब राजा को लेकर चल रहे हैं तो उनको ये है, उनकी जो भावना है कि मेरे पैर के नीचे कोई जो जीव जंतु ना कर जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए। वो भक्त जो है उसका हृदय कैसा था, तो उनको ये था कि मेरे पैर के, तो इसलिए जब वो उसको लेके जा रहे हैं तो इधर से उधर चलते हुए उनकी जो है वो डोली तो हिल रही थी, वो चीटी के ऊपर से कूद रहे हैं, तीन लोग सीधे चल रहे हैं, एक वो उधर चल रहा है। तो पर उसके बाद में जो राजा थे वो नाराज होते हैं, वो उनको बहुत कुछ कहते हैं। वहां से राजा ने उनको कहा कि कैसा मूर्ख आदमी है, इसको चलना नहीं आता, ये मोटा है, ये ऐसा है, इसको ज्ञान नहीं है। उस राजा का कार्य था, उसके बाद राजा कहते हैं कि मुझे इसे दंड देना होगा और वो उनको कई तरह से प्रताड़ित करता है। राजा बहुत तरह की चीजें बोलता है, फिर भी वो तो चुप रहते हैं, किसी बात में कोई किसी तरह का रिएक्शन करते ही नहीं है। तब राजा जो है उतर के बोलता है कैसे पार्टी रोको, क्योंकि राजा नाराज हो रहा था। वो बाकी तीन जो कहा थे वो कहते हैं कि अरे ये हमारी भी समस्या हो जाएगी, तो वो तीनों कहते हैं कि ये तो इसकी वजह से हो रहा है। राजा उतरता है, राजा जो है बहुत क्रोध करता है बहुत, और वो चुप रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो राजा फिर बोलता है, राजा ने कहता है कि तब कहते हैं कि नहीं तुम जिसको कह रहे हो मेरे शरीर को कह रहे हो, तो तुम सही कह रहे हो, कहते तुम गलत नहीं कह रहे हो, ये तो शरीर मोटा है ऐसा है समझ नहीं, उसे तो मेरे को क्या बुरा मानने की जरूरत है। वो पांच मिनट चंद में आता है बहुत सा उनके साथ में, तो राजा समझ जाता है कि ये तो परम ज्ञानी है, राजा उनसे क्षमा मांगता है। और तो पर कहने का तात्पर्य को जो जड़ भरत उन्होंने अपना जीवन की, क्योंकि उन्हें याद था अपना पूर्व जन्म कि मैंने इतनी तपस्या करी सिर्फ एक हिरण के चक्कर में, मेरा जरा सा उस हिरण के प्रति आसक्ति हो गई और मुझे भौतिक संसार में दोबारा आना पड़ा। पर वो भक्त थे तो भगवान की कृपा थी, तो वो अपनी वह उनको पूरा स्मरण था कि अपने पूर्व जन्म था, तो इस बार वो निश्चित करके आते हैं अब की बार मैं इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं करूँगा, तो उस आकर्षण में न पड़ूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इस संसार के साथ कुछ व्यवहार ही नहीं करना है। और इसीलिए वो अपने को बुद्धू बन के रहा करते थे, कोई बात कोई कुछ कहता था वो ऐसे रहते जो कह रहे हैं, कहीं भी जो संसारिक चर्चा होती थी वो उसे सुनते नहीं थे। तो ऐसा जो है भक्त का व्यवहार होता है। हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण हमारे लिए, तो हमारे लिए भी यही इसमें जो ये उदाहरण है, तो हमारे लिए इसमें सीखने की बात यही है कि हमको भी ये ज्ञान होना चाहिए कि इन इंद्रियों का हमको जो इस इंद्रियों के द्वारा संकट हमारे सामने आ सकता है, वो संकट का हमें पूर्ण आभास होना चाहिए। जब हमारे को ज्ञान होगा तो हम पूर्ण चेष्टा करेंगे किस तरह से हम अपनी इन कर्मेंद्रियों को सांसारिक भौतिक जो है सुखों के प्रति न जाने दें। हमें वैसे सब कर्मों को धीरे धीरे क्षीण करना है, और क्षीण करने का भी यहाँ पे प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि वो तरीका ये नहीं है। अगर हम सोचें जैसे वो शेर का उदाहरण दिया, और सोया हुआ हुआ अगर आप सोचें कि उसको खुराक न दें, तो भी सोया हुआ शेर अगर आप किसी दिन उसको छेड़ा तो भवक के ऊपर आएगा। तो वैसा नहीं करना है हमको, उनको अपनी इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और इनको उससे भी बेहतर जो सुख है उसका आभास देना है। जब हमारे को हमारा जो एक्सपीरियंस ऐसा हो जाएगा, जब हम भगवान के और उत्तम सुख का चल लेंगे, तो हम जो क्षीण जो वस्तु है उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। और इसीलिए हमको भगवान के नाम, सबसे बड़ा जो है अगर हम भगवान के नाम का जप करते हुए और उसका जो भगवान की कथा सुन के भगवान अपने जीवन में, अगर हम देखेंगे अगर हम एक अच्छे समय तक जीवन में शुद्धि रखते हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, है हम सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, हम जो है भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, नाम जप जो है वाकई में जैसा आपको सिखाया जाता है कि भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हमें सेवा दें। और अभी क्योंकि हमारी सबको हमें समझ में आता है कि अगर मेरे जीवन में मुझे जो है अगर मेरे जीवन में सर्वोच्च अगर मैं कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूँ तो भगवान की सेवा है, तो उस सेवा की पुकार के लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। और हमारे को पूर्ण ये विश्वास है कि ये भगवान के आश्रय से के अलावा एक तो कोई मेरे पास में कोई दूसरा वो भी नहीं है, वैसे भी उस आश्रय से बढ़कर कुछ है नहीं। जब मैं भगवान की गोद में हूँ तो मुझे संसार की किसी चीज की चिंता ही नहीं। तो जब हम इस दृढ़ता के साथ में भगवान की सेवा करते हैं और फिर तो हमारे जीवन में हम देखेंगे कि सुख आ जाता है। हमारे को जीवन में जो जीवन में कष्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है कष्ट तो निश्चित है, तो जो कष्ट भी आते हैं तो मुझे विचलित नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि हर स्थिति में ये सब मानसिक है, अगर हम किसी भी परिस्थिति में संसार की वजह से, हमने उदाहरण देखा कि जड़ भरत ने कहा ना कि तुमने जो भी कुछ कहा मेरे शरीर को, अगर हम भी देखेंगे तो हमारी सारी समस्या का मूल कारण हम जब इस शरीर के साथ में अपने को हम अपने आप को शरीर मानते, मुझे किसी ने ऐसा कहा, मुझे किसी ने ये कर दिया, या किसी भी तरह अगर आप देखिए शारीरिक स्तर पे जिसने ये शरीर जाएगा आत्मा तो रहेगी ना, हम सब जानते हैं। अगर हम उसी समय अपने को हम इसको बहुत दृढ़ता से समझे कि मैं शरीर नहीं, वाकई में मैं वो आत्मा हूँ जो आत्मा अनंत काल से कई शरीरों से गुजर चुकी है, और अल्टीमेटली लक्ष्य एक ही है कि इसका स्थान भगवान की सेवा में। ये शरीर तो संसारिक है, इस शरीर को जाना है, तो अगर मैं उस पे ही ध्यान दूंगा, आत्मा पर ध्यान दूंगा, तो एक तो हम जो जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे विचलित नहीं, और हम और दृढ़ता से भगवान की सेवा कर सकेंगे, और भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमको आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण श्री गोपाल जी जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर देने का प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रश्न जो है आज के श्लोक में श्लोक है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण अब आप प्रश्न कर सकते हैं।
तो
वो के बाद तो उसमें उनके साथ में भी कालकृष्ण के साथ में भी तो ये हुआ था कि भगवान फिर उन्हें वापस ले आते हैं और बाद में नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है उनके द्वारा उनकी जो है रक्षा होती है। तो इसीलिए जो भगवान के आश्रय में है वो कैसे भी माया की चपेट में आ जाएगा तो भी भगवान जो है उसे आप और हम अगर अपने जीवन में बहुत बारीकी से देखें तो हम भी अपने जीवन में कितनी ही तरह की गलतियां कर चुके हैं, मतलब भगवान से के विरुद्ध जाने का, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं जो अपने भक्तों के द्वारा हमको अपनी शरण में ले आते हैं। तो भगवान तो परम शक्ति है और इसे हम अपना ही अवलोकन करेंगे तो हर निश्चित तौर पे हम में हर कोई फिर हम सब इससे जो उनका उदाहरण है हम सब भी अपने अपने तरीके से इंद्रियों की गुलामी करते रहते हैं फिर भी हम यहाँ आ पाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, ये मंदिर जो है भगवान का स्थान है, यहाँ पे हम लोग ऐसा समय हम लोगों को क्योंकि हम रोज आ रहे हैं, हम प्रतिदिन हम यहाँ आ पाते हैं, भगवान के दर्शन कर पाते हैं, भगवान का कीर्तन सुन पाते हैं, भगवान का प्रसाद खा पाते हैं, हम इसे बड़ा साधारण समझते हैं। आप जो यहाँ से भक्त जो वापस भारत जाते हैं और फिर चूंकि हफ्ते का पालन तो करना ही है तो उन्हें वहाँ नौकरी करनी होती है, कितनी तरह की समस्याएं आती है उनको, वो उसकी कीमत समझते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, वो कहते हैं वहाँ महीनों महीनों हो जाते हैं, मंदिर जाने को नहीं मिलता, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलता। तो ये हमारा जो है ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण भगवान परम शक्ति का माया। और ऐसे कितने उदाहरण है जो हम देखते हैं कि आप देखिए कि श्रीला प्रभुपाद ने इस भक्ति के द्वारा इस भक्ति की शक्ति के द्वारा कैसे जो लोग जिनको किसी तरह की भूमिका ही नहीं थी और जो जो जिसका हमें कहा कि भाई जो इंद्रियों को किससे खींचना चाहिए, सबसे पहले तो जो चार हमारे लिए निषेध की गई है वैसी चार जब भी परिस्थितियां आती हैं जहाँ शराब जहाँ मांसाहार जहाँ परित्री संग और जहाँ जुआ, ये जब चार चीजों का जहाँ पे भी व्यवहार हो रहा है वैसी किसी भी परिस्थिति को जरा सी उत्पन्न भी हो रही है ना थोड़ा सा भी उसका स्थान मिल रहा है तो हमको भी अपनी जैसे कछुआ संकुचित कर देता है वैसा ही करना, बिल्कुल कोई चांस देना ही नहीं चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कि जिन्होंने प्रभुपाद ने चार नियमों का पालन कीर्तन आप देखिए कि और आज हमारे लिए कितने पूजनीय हैं वो भक्त जिन्होंने अब प्रभुपाद को अपना जीवन दिया और कैसा उन लोगों का सुंदर जीवन है। और एक एक भक्त जो शरीर छोड़ के जाता है हम आज दिन हम देखते रहते हैं प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो सब आज देखिए वो अभी भी आया था इस वीक में भी कई माता जी ने शरीर त्याग किया तो कैसी उनकी वो जो उस टाइम पे उनकी जो भावना थी जो उनकी चेतना थी शरीर छोड़ते हुए टाइम कि सब भक्त उनका कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ में कीर्तन करें वो भी कीर्तन करें कीर्तन करते करते शरीर छोड़े साधारण बात नहीं था। सिर्फ इस भक्ति के द्वारा जो भक्ति का मार्ग है उसको जिन्होंने अपनाया तो वो प्राप्त कर रहा है। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।